जाने भक्ति रस सार्ज रस सार से जाने भक्ति रस सार से जाने भक्ति रस सा गौरंगे राम मधुलीला जार करने प्रवेशिला गौरंग जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलता हृदय हृदय निर्मल भेलता जे गौरांगेर नाम लय तार है प्रेम दय जे गौरांगेर नाम लय तार तार मुई जाए बलिहारे तान हारे तारे मुई जाए बलिहारे गौरंग गुने ते झुरे नित्य लीला तरस पुरे गौरंग गौरंग गुने ते झुरे से जन भक्ति अधिकारे से जन भक्ति अधिकारे गौरंगे राजसंगी गने नित्य सिद्ध करी माने गौरंग तेरा संगी करे नित्य सिद्ध करी माने गौरांग से जाय ब्रजेंद्र सुत पास से जाय ब्रजेंद्र सुत पास श्री गौर मंडल भूमि जे भजन चिंतामणि श्री गौर मंडल भूमि जे भजन चिंतामणि तार है ब्रज भूमि वासा तार है ब्रज भूमि प्रेम रसन बेसे तरंगे जेवा डूबे गौर प्रेम रसन बेसे तरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग गृहे बाबने ते थक हागौरांग बोले डाक गृहे बाबने ते थक हागौरांग बोले डाके नरतम मागे तार संग आहा नरतम मागे तार संग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि गौर 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 हरि सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि गौर 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 हरि जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाख जय राधे श्याम ललिता विशाख जय राधे श्याम जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
जयमित्तला प्रविष्टम श्री विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक ब्रजमंडल धाम की बुल गिरिराज गोवर्धन महाराज की श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री श्री निताय सचि सुत की श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री गंगा मैया जमुना मैया की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की भुवन मंगल करी श्री श्री हरिनाम महामंत्र की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि ओम ओम अज्ञानम तिमिरम दस्यम ज्ञानम जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम जैनम तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवन् श्रीराधा कृष्ण पादन सगन ललिता श्री विशाखान्वितं स्म हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधकंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भयेवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय तो आप सभी के आशीर्वाद से आज जो समस्त वैदिक ग्रंथ का जो सार और सबसे रस से भरा हुआ जो विषय है श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में अध्याय 3 और श्लोक संख्या 8 के ऊपर आज श्रवण करेंगे हम सब लोग। तो श्लोक इस प्रकार का है, 71 चतुर्युगे एक मन्वंतर एकत्तर चतुर्युगे एक मन्वंतर चौदह मन्वंतर ब्रह्मार दिवस भितर चौदह मन्वंतर ब्रह्मार दिवस भितर एकत्तर चतुर्युगे एक मन्वंतर चौदह मन्वंतर ब्रह्मार दिवस भितर एकत्तर चतुर्युगे एक मन्वंतर चौदह मन्वंतर ब्रह्मार दिवस भितर पढ़ी माता जी माता जी तो श्लोक और अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपात के द्वारा जगत गुरु शिल प्रपात की एकत्तर इकहत्तर चतुर्युगे चतुर्युग में एक एक मन्वंतर मन्वंतर चौदह चौदह मन्वंतर मनु का काल ब्रह्मार ब्रह्मा जी का दिवस एक दिन भीतर के भीतर अनुवाद इकहत्तर चतुर्युग मिलकर एक मन्वंतर बनते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह मन्वंतर होते हैं। तात्पर्य मन्वंतर के एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन जो 12 घंटा 14 मनुओं के शासन काल के बराबर है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। यह गणनाएं सूर्य सिद्धांत नामक प्रामाणिक खगोल विज्ञान के पुस्तक में दी हुई है। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद दत्त के ने किया है। यही बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहलाते हैं और यही हमारे कृपाल गुरु थे। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए उन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उनके नाम के साथ गोस्वामी महाराज की पदवी जुड़ गई। तो आप लोगों को सारे विषय को अच्छे से जानना पड़ेगा कि जो श्री चैतन्य चरितामृत में उसमें जो मंगलाचरण में है वो मंगलाचरण का जो तृतीय श्लोक है तो वो श्लोक है अनार्पितम चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम सुभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदरम द्वितीय कदंब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसचिनंदन। हरि पुरट सुंदर, जो साक्षात भगवान है उनके अवतार के विषय में बताया गया है। आप साधारण बुद्धि अभी थोड़ा सा आपका ब्रेन का एक्सरसाइज कराएंगे, अब साधारण बुद्धि प्रयोग कीजिए। अगर कोई राष्ट्रपति या कोई भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है कोई जगह को आए और वो हरि बोल, आप लोग अपने बीच में बात मत कीजिए, अभी थोड़ा ब्रेन का एक्सरसाइज कराएंगे आप लोगों का। तो कोई अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई स्थान में आए और कुछ ही वो स्थान को परित्याग करके अपने जगह को अपने घर को पुनः चले जाए और फिर से सोचे कि वो स्थान को फिर से मेरे को जाना पड़ेगा या जाना चाहिए, तो इसका मतलब कोई महत्वपूर्ण काम छूट गया है या नहीं। अगर कोई बहुत विशेष बहुत माने सबसे बिजिएस्ट पर्सन सबसे व्यस्त जो माने व्यक्ति है कोई स्थान को आए, माने राष्ट्रपति कोई मतलब वृंदावन आए और यहां से चले गए कहां दिल्ली, अगर वहां पे उनको फिर ये अनुभव हो रहा है कि नहीं नहीं मेरे को फिर से वृंदावन जाना है, तो इसका मतलब है कोई विशेष काम छूट गया है या नहीं साधारण दृष्टि से। तो इसी जो श्लोक में कहा गया कि अनार्पितम चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, तो अवतीर्ण कलौ का अभी आज का जो श्लोक है इसके ऊपर ये वर्णन किया जाए। अवतीर्ण कलौ, कलयुग में जो अवतीर्ण हुए कौन है ना, वो हरि है। तो आप लोग सब जानते होंगे कि भगवान कहने से वृंदावन में एक ही माने सब लोग जानते हैं और सुबह से शाम तक यही नारा लगाते बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान कहने से भगवान श्याम सुंदर को समझाते जो हमारे मंदिर में आप दर्शन करते हो, वो हरि अब कलयुग में अवतीर्ण हुए। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान का जो अवतीर्ण हुआ है द्वापर में अवतीर्ण लिए, यहाँ पर गिरिराज जी को हम परिक्रमा करते हैं, जमुना जी देखते हैं या ब्रजमंडल में घूमते हैं, ये सब किनका लीला स्थली है, कौन सा ठाकुर जी, भगवान कृष्ण है। मगर यहाँ पर कहते अवतीर्ण कलो, वो कलयुग में अवतार ले लिए, तो यहाँ पर तो वो कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे। तो जो भगवान अभी मतलब जब मतलब सद्य सद्य मतलब अभी अभी जो अभी अभी द्वापर के अंत में जो भगवान ने अवतीर्ण हुए वो पुनः कली के प्रथम संध्या में फिर से आए। माने जैसे अगर आपके मोबाइल फोन अगर कहीं जगह में छूट गया है तो आपको अगर तुरंत याद आ जाए तो आप दूसरे काम पहले करोगे ना पहले मोबाइल फोन लेने के लिए जाओगे। हा? तो जो भगवान अभी अभी कि जो द्वापर के अंत में जो भगवान अवतीर्ण हुए और जो लीला विलास किए वो भगवान कहते कलौ प्रथम संध्या या कलयुग के प्रथम संध्या में भगवान पुनः आ जाते। इसका मतलब है कि भगवान को जैसे आपके लिए आपका मोबाइल विशेष जरूरी है उसी प्रकार भगवान को कुछ विशेष वस्तु को देने के लिए भगवान को पुनः आना पड़ा, भगवान को पुनः आना पड़ा। वो विशेष वस्तु इसमें कहा गया है कि इस जो तृतीय अध्याय में भगवान दो जो भगवान के अवतार का कारण दो प्रकार का बताया कि कलयुग में जो भगवान अवतरित हुए उसमें दो कारण में विभक्त किया गया है, एक है बाह्य कारण एक है अंत कारण। बाह्य कारण मतलब बाहर के व्यक्ति के लिए, जैसे हम जानते एक तो हमारे खुद का जरूरी है एक बाहर वाले के लिए। तो वह बाहर वाले के लिए भगवान जो माने बाह्य कारण के लिए भगवान तीन कारण था बाह्य कारण जो भगवान आए। तो एक है वो कारण क्या है ना, जो पहले है कि भगवान संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करने के लिए आए। तृतीय अध्याय में तीन कारण बताए गए भगवान बाह्य जो चैतन्य महाप्रभु की वो बता लिए बाह्य कारण उसका क्या है। तो उसमें तीन विषय के ऊपर बताए हैं कि जुग धर्म प्रवर्तमु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचमु भुवन। चैतन्य चरितमृत में जो तृतीय अध्याय में उसमें 19 नंबर श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं कि जुग धर्म का जो प्रवर्तन नाम संकीर्तन है और चारी भाव चार प्रकार का भाव देके मैं संपूर्ण जगत को नचाऊंगा आनंद के रस में नचाऊंगा। ये है बाह्य कारण का पहला कारण कि भगवान नाम संकीर्तन का माध्यम से संपूर्ण जगत में क्या विस्तार कर रहे हैं, प्रेम प्रेम विस्तार कर रहे हैं। माने कहते नाचा मो भुवन। तो पुनराय भगवान सोचे कि ये बाह्य कारण का हो गया, फिर भगवान देखे कि बाह्य कारण में जो विशेष कारण है कि जो ब्रज प्रेम है, ब्रज भक्ति है, वो कभी नहीं दिया जाने वाला चीज वो देने के लिए आए कि चारी चिरकाले नाही करे प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। कि अगर मैं कह रहा हूं कि नचाऊंगा तो आप जानते हो कि आजकल हम लोग नाचते माने शादी ब्याह इत्यादि में भी नाचते है या नहीं। अगर आप लोग इस प्रकार का नृत्य अगर सोचोगे तो ये आप लोगों का गलती है, क्योंकि वो जो नृत्य है उसके पीछे क्या रहता है, दुख रहता है। हर एक सुख के पीछे क्या रहता है, दुख भरा रहता है। मतलब भगवान ने सोचे कि जो दुख जिसमें सुख ही सुख मिले वो कैसा विषय वस्तु है। वो कहते हैं कि भक्ति बिना, भक्ति के बिना कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए जो चीर काल में जो अभी तक जो वस्तु नहीं दिया गया वो भक्ति बिना जगत तेरे नाही अवस्थान, भक्ति के बिना इस जगत में अवस्थान करना मतलब जैसे एक मृत प्राय है। तो इसलिए भगवान ने क्या किए ना, प्रेम भक्ति देने के लिए पुनः अवतरित हुए, जिसके बारे में फिर से बताते हैं कि जुग धर्म प्रवर्तन आम अंश ही थे, कि मेरे अंश तो जुग धर्म प्रवर्तन कर सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने 70 साल की उम्र में पूरे संपूर्ण विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर दिए है या नहीं। तो उसी प्रकार भगवान कहते मेरे अंश मात्र से मैं सारे जगत में हरिनाम प्रचार कर दूंगा, मगर एक चीज जो मेरे को ही आना पड़ेगा वो कारण है आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम देते। मेरे बिना और कोई भी व्यक्ति जो ब्रज का जो प्रेम है वो नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब महाप्रभु ही अल्टीमेट एक रास्ता ही, एक ही मात्र रास्ता है हम सभी के लिए। भले ही हम इधर उधर भाग जाए मगर महाप्रभु कहते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम देते, मेरे बिना अन्य कोई नहीं है जो ब्रज प्रेम दे सकता है, इसलिए मेरे को ही आना पड़ेगा। इसलिए किसको आना पड़ेगा, जैसे हमारे कभी कभी मैंने बताया उदाहरण दिया कि मोबाइल लाने के लिए कभी कभी हम असिस्टेंट को भेज देते, जाओ उधर से मोबाइल में छूट गया तुम उधर से लेके आ जाओ। मगर इस प्रसंग में भगवान को स्वयं को ही आ सकते हैं, आना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते मेरे बिना और कोई ब्रज प्रेम नहीं दे सकता है। तो दो कारण हो गया, पहला कारण है संकीर्तन धर्म का प्रचार, दूसरा कारण क्या है कि जो ब्रज प्रेम है, जो भक्ति है, प्रेम भक्ति है, उसका दान के लिए। और जो तृतीय कारण है भगवान जो आए वो है आप जानते हो अद्वैत आचार्य के पुकार में। अद्वैत आचार्य ने पुकारे ये भगवान आप अवतरित हुए, तो ये एक बाह्य कारण है जो अद्वैत आचार्य के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए। तो आज का जो श्लोक है वो किसके ऊपर आधारित है, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड में कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि 71 चतुर्युग। तो इसमें जो अनार्पितम जो चरिम चिरात जो श्लोक है उसका व्याख्या हो रहा है अभी, ये पूर्ण अध्याय में इसका ही व्याख्या होगा। तो अनार्पितम चरिम चिरात करुणा करुणया अवतीर्ण कलो, अवतीर्ण कलो इस शब्द के ऊपर आज का श्लोक आधारित है। अवतीर्ण कलो, अच्छा कलयुग का जो अवधि है आप लोग जानते हो ये समय का निर्धारित किया गया है। कलयुग आप लोग जानते हो 432,000 साल। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत इसमें माने जो दो भाग में विभक्त है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत जो पहला सृष्टि है, भौतिक जगत जो पहला जीव है वो कौन है बता सकते कोई, कौन बताओ, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के अनुसार समय का गणना को, ज्यादातर वैदिक गणना को ब्रह्मा जी के गणना के अनुसार लिया गया है। तो जैसे हमारे इस भूमंडल में 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा हम रात्रि को लेते हैं, इस प्रकार पूरा संपूर्ण दिवस और रजनी मिलके एक ही दिन हम मानते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी का 12 घंटे दिन होता है और ब्रह्मा जी का 12 घंटे रात ब्रह्मा जी के लिए। तो इस ब्रह्मा जी का 12 घंटे में मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करते, कितना मनु, जैसे आप लोग इस तरीके से समझिए, जैसे मानो यहाँ पे हमारे मतलब किसी के सिक्योरिटी में ड्यूटी लगा है, तो वो क्या करेंगे ना, शिफ्ट होता है कि भाई डे शिफ्ट तुम्हारे, 3 घंटा तुम करोगे, 3 घंटा मैं करूंगा, 3 घंटा वो करेंगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का जो 12 दिन में 14 मनु आके शासन करते, कितना मनु, 14 मनु। अच्छा 14 मनु, एक एक मनु कितना शासन करते हैं? 71 चतुर्युग। कितना? 71, 7 और 1 चतुर्युग। चतुर्युग मतलब, युग मतलब जैसे आप जानते हैं कलयुग, तो युग कहने से तीन चारों को समझाता है, सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली, तो इसको कहते हैं युग। और सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली मिलके एक चतुर्युग होते, इसको दिव्य युग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दिव्य युग कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो एक चतुर्युग हुआ। तो एक मनु कितना चतुर्युग शासन करेगा? 71 चतुर्युग शासन करेगा। एक मनु 71 चतुर्युग शासन करेगा। मगर आज ये तो वर्णन हो रहा है कि 71 चतुर्युग एक मनवंतर, एक मनवंतर 71 चतुर्युग। अच्छा आप सोचो कि एक चतुर्युग के अंदर कितना समय का अवधि होता है? कलयुग का जो अवधि है कितना है? द्वापर का कितना है? इसका मतलब कली का जो डबल है वो द्वापर का है। फिर त्रेतय का और सत्ययुग का, तो इन सभी को अगर जोड़ दो तो फिर ये होगा एक चतुर्युग। अच्छा आपका समय का जो अवधि है वो कितना, सोचो कितना है आप लोगों का समय अवधि? पता नहीं, क्योंकि मृत्यु जब तक नहीं होता तब तक गिनती नहीं कर सकते कितना साल हम जिए। फिर भी एक गणना करो कि हम सभी का जो समय के जीवन अवधि है, मैंने विशेष रूप से अगर मोटा मोटी के रूप से ले लिया जाए 70-80 साल तक ले लेते, तो जो कलयुग का जो अवधि है उसमें क्या एक डॉट बराबर भी नहीं है, मतलब एक डॉट के बराबर भी नहीं है। और अगर चतुर्युग में गिनती करेंगे तो एकदम आता पता भी नहीं चलेगा, और अगर 71 चतुर्युग में देखेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि हम कहां है। मगर आप सब लोग सोचो कि ये एक ऐसे मौका है हम सभी के पास। मैं जानता हूं कुछ लोग सो गए है, आंख बंद भी कर लिए, फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं इतना शुद्ध नहीं हूं, जो बात मैं बताऊंगा आपके हृदय में चुक जाएगा। फिर भी होता है कि एक टेक्निकल दृष्टि से हम एक बात समझाने के लिए प्रयास करेंगे कि आप सोचो जो हमारा अवधि है इस कलयुग में भी ना के बराबर है, माने एक निमिष मात्र है। निमिष भी कहने से बहुत गड़बड़ी हो जाएगा, और चतुर्युग में तो और भी ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगा। अगर 71 चतुर्युग में गिनती करेंगे तो और भी गड़बड़ी हो जाएगा। और ये जो महाप्रभु का अवतार हुआ है, महाप्रभु कब अवतरित होते हैं? ना ब्रह्मा जी का जो सातवां मनु जब शासन करते हैं, इसका मतलब 71 चतुर्युग पहले चला गया, फिर दूसरा चला जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां जो मनु आएगा उनमें से, फिर 1, 2, 3 करते करते जब 28वां मनुवंतर आएगा, सॉरी जब 28वां चतुर्युग आएगा, सातवें मनुवंतर में जब 28वां मनवंतर आता है तो कलयुग में जो एक समय होता है, जो कलयुग का जो पहले जो मतलब जो संध्या का जो अवधि है वो एक गोल्डन पीरियड है। कैसे? गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि इसी अवधि में स्वयं भगवान जो श्याम सुंदर जो गोलोक विहारी है वो पुनः अवतरित होते हैं। वो किसके रूप में? ना गौरांग महाप्रभु के रूप में। और वो गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर करते क्या है? ना यही जो अनार्पित जो कभी नहीं दिया गया है, जो ब्रज प्रेम जो कभी नहीं दिया गया है, वो प्रेम को फिर से प्रदान करने के लिए आते हैं। तो आप सोचो कि आप ऐसे एक जीव हो तो आप समझ पा रहे हो कि मेरे जन्म वही जो 28वां चतुर्युग में, माने कैसे संजोग बैठ रहा है आप समझो कि आपका जन्म वही 28वां चतुर्युग में, माने यहां पर माने हम लोग कभी कभार हम मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में भी देखे हैं और कभी कभार हम वृंदावन में भी देखे, जैसे ठंड का मौसम है कभी अगर कोई व्यक्ति बहुत महंगा कंबल बांटने के लिए आया है, बहुत महंगा कंबल, और वहीं पे जो साधु रहता है अगर उसको वो कंबल मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, और दूसरे साधु को जब बताता है कि भाई उस समय जो आज का सुबह जो हुआ ना एकादशी के दिन वो उसी दिन ये कंबल बांट रहा था और मेरे को एक कंबल मिल गया, और जिस साधु को वो कंबल नहीं मिला उसका मुंह एकदम से लटक जाता है ना, दुखी हो जाता है या नहीं? तो आप सोचो कि इसी एक अवधि है हम लोग जन्म लिए है कि 28वां चतुर्युग में, और वही कली का प्रथम संध्या में, और वही जो गोलोक बिहारी भगवान श्याम सुंदर जो ब्रज प्रेम देने के लिए आए थे, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उनके विषय वस्तु को हम सुन रहे और समझ रहे और उनके द्वारा बताया गया सर्वोच्च धाम श्री वृंदावन में वास कर रहे और उनके दिया हुआ जो रास्ता है उसको अनुसरण कर रहे हैं, तो हम कितने बड़े भाग्यशाली जीव है। समझ पा रहे हो या नहीं? कौन लोग समझ पा रहे? हाथ खड़े करो ना। हाथ धीरे धीरे उठ रहा है, मैंने समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि ये है गोल्डन चांस है, मगर इसी गोल्डन चांस को अगर हम लोग हराएंगे तो फिर आप समझ सकते हो कि आप कितना बड़ा दुखी हो रहे। जैसे जिस प्रकार जो मैंने बहुत महंगा कंबल कोई दूसरे साधु को जो नहीं मिलता है, जब जिसको मिल गया है अगर उसको देखता है जिस प्रकार दुखी होता है, हम तो एक कंबल के लिए दुखी हो जाते हैं। तो फिर आप सोचो जो जीवन का जो सर्वोच्च प्रेम है जो महाप्रभु देने के लिए आए, अगर हम उसको मिस कर देंगे तो फिर कैसे होगा। एक बार सार्वभौम प्रभु कथा कर रहे थे, तो कथा करते करते एक बहुत सुंदर व्यंग बात भी बताए थे और बहुत सुंदर समझने के बाद बताए थे कि एक घर था, जिसमें 84 दरवाजा था। कितना दरवाजा था? 84 दरवाजा। तो 84 दरवाजा था और सारे दरवाजा जो था बंद था, मगर एक ही दरवाजा था जो दरवाजा खुला हुआ था, मगर जो व्यक्ति था वो अंधा था। इसलिए व्यक्ति अंधे होने के कारण वो कमरे के अंदर बंद हो गया था, कैद हो गया था। तो अंधे व्यक्ति क्या करेंगे? दीवार का सहारा लिए, दरवाजा को ढूंढने के लिए दीवार का सहारा लिए। तो फिर अपने हाथों से दीवार के ऊपर ऐसे हाथ घुमाते गए, जैसे आप जैसे देख रहे हो खिड़की एक, खिड़की दो, खिड़की तीन, खिड़की चार, ऐसे करके वो सारे खिड़की देखे बंद है, सारे दरवाजा बंद है। तो जब 84 जिस दरवाजा जब खुला था उसी समय वो व्यक्ति को क्या हुआ ना, हाथ में खुजली आ गया। मगर उसी समय हुआ क्या था ना, पूर्व अभ्यास के कारण उसका जो गति था वो चल रहा था, मैंने पैर में वो चल रहा था और हाथों में खुजली आ गया। तो एक हाथ से दूसरे हाथ को खुजलाता गया मगर उसी समय चलता भी गया, समझे ना। तो चलते चलते वो क्या हुआ ना, 84 नंबर जो दरवाजा था वो क्या हुआ, छूट गया। जो खुला हुआ दरवाजा था वो छूट गया। फिर जब खुजली बंद होते हुए जो दूसरा दरवाजा को हाथ है ये भी बंद है। तो ऐसे करते करते भ्रम करते करते इसलिए कहते ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। आप लोग कितने ब्रह्मांड भ्रमण किए हो ये तो आप लोगों को पता नहीं कि भगवान ने कृपा करके भुला दिया कि वृंदावन आए हो, अभी सब भूल जाओ, अभी सिर्फ नाम जप में याद रखा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के कृपा में भक्ति लता बीज प्राप्त करते हैं। अच्छा, भक्ति लता बीज, फिर बीज में से कई एक क्वालिटी भी होता है ना, आप जानते हो कई एक क्वालिटी का बीज रहता है। सबसे तो बेस्ट क्वालिटी बीज है, समझ रहे ना, वो श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। इसीलिए खुद कह रहे, जब आप कभी कभी दुकानदार के पास जाओगे, अरे यही माल तुम बाजार से खरीद के हमको दिखा दो ना, ऐसे कहते ना। जो थोड़े एक्सपर्ट जो बेचने वाला होता है या जो मैंने जो सही माल रखता है तो वो ऐसे बहुत जोर जोर से बताते, ये माल तुम बाजार में खरीद के दिखा दो मैं तुमको फ्री में दे दूंगा, ऐसे कह देते ना। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि आमा बिना केव नहीं ब्रज प्रेम दीते, मेरे बिना और कोई ब्रज प्रेम नहीं दे सकता है। मैंने जो द बेस्ट जो कृष्ण भक्ति का बीज है वो श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। तो इसलिए हमारा संयोग है कि हम मनुष्य शरीर में है और हम मनुष्य शरीर में नहीं, हम मनुष्य शरीर में मनुष्य पर कई प्रकार के होते। महाप्रभु समझाए आगे चल के आप समझोगे, सनातन गोस्वामी को कहते इस जगत में कई प्रकार का जीव है जिसमें स्थावर है, जंगम है, और ये स्थावर जंगम है, फिर उनमें से कोई नवचर है, कोई स्थलचर है, कोई जलचर है। तो इनमें से एक एक करके प्रधानता दिखाए, फिर उनमें से कहते हैं कि मनुष्य जो है वो उनमें से सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपने बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग कर सकता है। वैसे बुद्धि तो सबके अंदर है मगर जो दिशा सही में प्रयोग कर सकता है। फिर कहते मनुष्य फिर कई प्रकार के मनुष्य है, आप जानते हैं मनुष्य कई प्रकार के हैं। फिर उन मनुष्य में से हम लोग जो मनुष्य है ना, आंख में दिखाई दे रहा है, कानों में सुनाई पड़ रहा है, हाथ को मूवमेंट कर पा रहे हैं ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मनुष्य हम लोग है। तो उन मनुष्य में से कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, उनमें से आस्तिक प्रधान होता है। फिर उन आस्तिक में से कुछ लोग वेद को मानते हैं और कुछ लोग वेद को नहीं मानते, तो उसमें से वेद को मानने वाला प्रधान होते हैं। फिर उन वेदों का जो सार है, वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्य, जो वेद का समस्त सार वस्तु है कि भगवान कृष्ण का भक्ति, वो जानने वाला व्यक्ति बहुत कम है। समझ में आ रहा है? इसलिए मनुष्यानां सहस्रेषु क्वचित् यदि सिद्धये यतामपि सिद्धानं कस्यमं व्यतितत्वतः। तो उन मनुष्य में से कोई कोई व्यक्ति इसको जान पाता है, और कोई कोई व्यक्ति में से आप लोग एक हो। तो पहले तो आप मनुष्य में से अच्छे व्यक्ति हो, जिसके वजह से आप सभी को यह समझ में आ गया कि वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। और ये वही समय है जिस समय स्वयं महाप्रभु कहते हैं यही गोलोक का दरवाजा आप लोग के लिए मैं खोल दिया हूं। समझ जाना, तुमार लाइते आमी हैनो बतार, आमी बिना बंधु के आछे तुमार। तो कहते तुम्हारे लिए मैं अवतार लिया, तुम्हारे लोहिते आमी हैनो अवतार, मैं दोबारा आने का कारण क्या है, केवल आपके लिए। कहते तुम्हारे लोहिते आमी हैनो अवतार, मैं आपके लिए अवतार लिया। और वैसे नहीं कि जबरदस्ती चलो 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 यहां से चलो, ऐसे नहीं। आमी बिना बंधुआर कैसे तुम्हार, मेरे बिना तुम्हारा बंधु तुम्हारा मित्र कौन है जो इतना प्रेम दे के हमको लेके जा सकता है। समझे ना, पहले जमाने में तो मार पीट के भगवान लेके जाते थे, हिरण्यकश्यप वगैरह को सब गला काट के ये करके किसी भी रूप से अपने धाम तो दिए ही। जैसे मानो बकासुर अघासुर को फाड़ फूट के बंदे सब मैंने करके भगवान ने अपने धाम को दिए। समझे ना, कल प्रेम कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान, हम एक गुण पढ़ रहे थे भगवान के, भगवान की उदारवादी उदारवादी। तो मैंने सोचा कृष्ण कैसे उदारवादी बन गए, तो कहते अरे जो पूतना को पुतना जिसने मारने के लिए आया वो अपने स्वधाम अपने मातृगति दे दिए तो भगवान उदारवादी बन गए। मगर वो भगवान मार पीट के दिए, किसके दिए, मार पीट के दिए। मगर जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, इस प्रकार का अवतार नहीं है, मार पीट वाला अवतार नहीं है। वो कैसे ना, भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं अपने संकीर्तन के माध्यम से सबको नचाते नचाते हंसाते हंसाते वो भगवत धाम दे दूंगा जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था वो प्रेम। जानते हैं ना, ब्रह्मा जी अपने आयु काल में ब्रह्मा जी 66,000 साल तक तपस्या किया। अभी ब्रह्मा जी का एक दिन सुन के आपका दिमाग खराब हो जा रहा है कि एक दिन में माने 14 मनवंतर आता है, एक मनु 71 चतुर्युग शासन करता है, एक चतुर्युग का अवधि इतना है। वो ब्रह्मा जी 66,000 साल तक तपस्या करने के बाद वो ब्रह्मा जी को क्या मिला, बरसाना धाम मिला। जानते हो तो आप सब लोग जो ब्रह्मांचल पर्वत बने बन के है, वो बरसाना धाम मिला। वो ब्रह्मा जी का भी दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु ऐसे तैसे दे दिए कि कभी पूछे नहीं कि ये कौन है, इसका जाति को क्या है, इसका गोत्र क्या है, या इसने कितना क्या किया है, ये सब नहीं किए। इसलिए पापी टापी जतचिल हरिनाम उद्धारिल, और उसका साखी क्या है, तार साखी जगाई माधा है, महाप्रभु ने ऐसे देने के लिए आए। और वो समय का अवधि अभी है, अभी वही समय अवधि है। आप लोग कभी देखोगे ब्राह्मण लोग जब मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम तस्मादिति ब्रह्मणो द्वितीय पराधे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे, ये वही समय है जो महाप्रभु का अवतीर्ण का समय है। तो अभी भी महाप्रभु का वही लीला चल, आप लोगों को ये संदेह आ सकता है कि महाप्रभु तो 5,500 साल पहले आए, अभी चले गए, हमसे क्या मतलब है, अभी अभी हम तो उससे वंचित हो गए। मगर एक बार परम पूज्य जयपतक स्वामी गुरु महाराज कह रहे थे कि जो महाप्रभु का वाक्य है, क्या वाक्य है, कि पृथ्वीते आचिजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हैव मन नाम। आप जानते हो जब प्रभुपाद जी इस वाणी को जब प्रचार करने के लिए जब गए थे, तो सारे जो दूसरे भक्त लोग थे जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के, ये सोचते थे पृथ्वी मतलब है ये माने भारतवर्ष में यहीं पे ही प्रचार प्रचार होगा, विदेश में कौन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सक्सेस भी नहीं हो पाए ठीक रूप से। प्रभुपाद जी के मन में दृढ़ विश्वास था कि नहीं नहीं, महाप्रभु जब बताए, स्वयं भगवान बताए, तो भगवान के तो बात माने वाक्य के भी असत्य नहीं हो सकता है। इसलिए पृथ्वी ते आछे जतो नगर अधिग्राम, जतो मतलब जितना, मतलब 1, 2, 3 जितना है, वो सर्वत्र सब जगह में प्रचारित प्रचार होगा, मोर नाम मेरा नाम जरूर प्रचारित होगा, मेरे नाम जरूर प्रचारित होगा, सर्वत्र प्रचारित है मोर नाम, मेरा नाम जरूर प्रचारित होगा, इस मतलब जरूर होगा ही होगा। समझ में ना, तो इसलिए अभी क्या पृथ्वी में सब जगह में प्रचारित हो गया है? आप जानते हो हमारे जो इस्कॉन के मोमेंट में यही बात महाप्रभु के बातों के ऊपर, इसी बातों के सिद्धांत के ऊपर जो चल रहे, प्रचार को लेकर जो चल रहे, हम लोगों का रास्ता क्या है प्रचार करने के लिए। तो इसको जैसे हम जानते हैं श्रील भक्ति तीर्थ महाराज किस प्रकार वो अफ्रीका के जंगल में जाके प्रचार कर रहे थे, वो उस जंगल में हर एक मतलब एकदम रिमोट एरिया में जाके महाप्रभु का नाम पहुंच रहा है। इसका मतलब है अभी तक बहुत सारे जगह में महाप्रभु का नाम पहुंचा नहीं, अभी बहुत सारे जगह में हरे कृष्ण महामंत्र पहुंचा नहीं। इसका मतलब है जो महाप्रभु जो बोले अभी तक वो कंटिन्यूअस है, अभी वो कार्य चालू है, जैसे निर्माण कार्य चालू है उसी प्रकार महाप्रभु का बात जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका मतलब लीला समाप्त हुआ नहीं, अभी लीला चल रहा है। इसलिए इसी लीला में, इसी संकीर्तन लीला में जो जो व्यक्ति वो भाग ले रहा है, मतलब कहीं एक भी व्यक्ति को वो भगवत उन्मुखी कर देता है अगर हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताता है, तो फिर वो क्या होता है महाप्रभु का प्रिय हो जाता है। इसलिए गौरांगे रसंगी गाने नित्य सिद्ध करिमाने, इसलिए प्रचार करते 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 वो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु का प्रिय बन के वो नित्य सिद्ध बन जाता है। से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, उसके लिए कोई दूसरा उपाय मैंने अपनाना नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ महाप्रभु का दिया हुआ रास्ता को अगर कोई अपना ले तो सीधा वो ब्रजेंद्र सुत पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? श्री भगवत धाम जो गोलोक वृंदावन में चला जाएगा। ये महाप्रभु का दिया हुआ रास्ता है, ये महाप्रभु का दिया हुआ संकीर्तन रास्ता है। तो इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का जो बाह्य कारण के विषय में, जो संकीर्तन विषय में बताते हैं, तो हम लोगों के लिए भी ये अनुभव करना चाहिए कि हम लोग भी इतना भाग्यवान जीव है, आज मेरे हाथ है, आज मेरे कान है, आज मेरे आंख हुई, मैं महाप्रभु को देख पा रहा हूँ, मैं महाप्रभु के बातों को सुन पा रहा हूँ, मैं महाप्रभु के जो लीला में अंश ग्रहण कर पा रहा हूँ। कई सारे व्यक्ति है जो जिनको आंख भी नहीं है, कई सारे व्यक्ति है जिनको कान मैंने सुनाई नहीं दे रहा है, कई सारे व्यक्ति है जिनका हाथ नहीं चल पा रहा है, कई सारे व्यक्ति जो बोल नहीं पा रहे, मगर हमको भगवान ने विशेष रूप से कृपा किया और विशेष रूप से अपने निजी धाम श्री वृंदावन में रखा और विशेष रूप से हमको प्रभुपाद जी का दिया हुआ सबसे सेफ माने सबसे सुरक्षित रास्ता, सबसे सुरक्षित पंथा, उसमें से रखते हुए हमको भगवत धाम की तरफ लेके जा रहे, तो हमसे बढ़कर और भाग्यवान जीव और कौन हो सकता है? ये ब्रह्मांड भ्रमित कुन भाग्यवान जीव, गुरु और कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। मगर इस भाग्य को आपको क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु कहते जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले कत निद्रा जा माया पिसाचे रकोले। कि मगर हम लोग वृंदावन तो मिला, सब कुछ मिला, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं माफ करना, वृंदावन मिला, सब चीज हमको मिल गया, सारे वस्तु हमारे हाथ में है, एक एक वस्तु वृंदावन में एक बार अगर सिर झुका दे, अगर वो रज हमारे सर में लग जाता है जो देवता के लिए दुर्लभ है, तो फिर सोचो अगर हमको सिर तो झुकाना पड़ेगा ना। जैसे प्रभुपाद जी ने जितने सारे हमारे मोमेंट में जो जो मैंने चीज हमको बताया के गए, तो उसके लिए हमको तो उठ के करना पड़ेगा ना, अगर हम सो जाए तो फिर हमसे बढ़कर दुर्भाग्य व्यक्ति कौन होगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जीव जागो जीव जागो, गोरा छांद बोले कोतो निद्रा जाओ माया पिसाचिरो कोले। तो ये वही डे टाइमिंग है, ये वही समय है जो महाप्रभु का आने का माने आने आके जो लीला करने का जो समय है। इसीलिए हम सभी को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम बहुत ही भाग्यवान जीव है जो महाप्रभु के संस्था में हम लोग है और महाप्रभु के दिए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, समझ में ना। तो इसमें कहते हैं मगर अगर हम लोग इसी ये को छोड़ दे तो बता लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, आया था वो चला गया, उसको कुछ पता नहीं चला। ऐसे देखे हम एक बार जो तिरुपति बालाजी में हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, अब तिरुपति बालाजी में पहले जमाने में मैंने दर्शन करने में 2 दिन टाइम लग जाता था, अभी तो फास्ट हो गया है, पहले 2 दिन समय लग जाता था। और 2 दिन में आपको कितना क्षण दर्शन होगा, कितना क्षण दर्शन होता है, सिर्फ एक दो तीन सेकंड ऐसे कुछ होता है, एक दो तीन सेकंड बस सामने से धक्का दे देंगे, तो उतने में से एक व्यक्ति जब दर्शन करके सारे इकट्ठा होकर चलते ना, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो कहते तुमने देखा, वो कहे हमको तो कुछ नहीं दिखाई दिया। और वो व्यक्ति दो दिन से प्रतीक्षा किया था कि तिरुपति बालाजी का दर्शन हो, वो क्या पता नहीं हमको तो जैसे ही हमने देखा कुछ नहीं दिखा, तब तक वो दूसरे किसी ने उसको बोला ए हरि बोल, तो इस तरफ देख लिया तब तक पुलिस वाले ने धक्का दे दिया। तो उसी प्रकार हमारा ये जो मनुष्य जीवन है, अगर हम वही खुजली में डाल दे, अगर वही इधर उधर के बातों में डाल दे, तो ऐसे ही मनुष्य जीवन चला जाएगा। ए मन दुर्लभ मानव देह, पाइया के करे भावना के एवे ना भोजिले जसदासुत चरणे पड़ी बेलाजे। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर अगर मिल गया और महाप्रभु हमको जगह जगह के बोल रहे कि चलो उठो मैं तुमको देने के लिए आये, देने के लिए भगवान आए हैं, जबकि हमको जाना चाहिए, देने के लिए भगवान आए, अगर हम सो जाए तो हमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसका होगा, समझे ना। तो इस प्रकार जो है श्री चैतन्य महाप्रभु हम सभी को जगा दिए, उनके जो महाबदान्य अवतार है, इसलिए हम सभी को सोचना चाहिए। हम सब जो कृष्ण को भूल चुके हैं, इसलिए कम से कम हम लोग वृंदावन धाम मिला, ये प्रभुपा जी का इतना सबसे सुरक्षित संस्था मिला, जिसमें हमारा पूर्वतन आचार्य लोगों के द्वारा दिया हुआ सारे नियम मिला, अगर इस बार अगर हम नहीं जाएंगे तो आप जान लो और कौन सा मनमंत्र में आप जाओगे, समझ में ना। इसलिए मगर महाप्रभु कहते थोड़ा सा भी अगर कोई कर देता है, और महाप्रभु से भी ज्यादा उदार श्री नित्यानंद महाप्रभु है, थोड़े से भी महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हम सभी को चाहिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको निर्देश करते सही हरि नाम मंत्र लोई लमागिया, हमको थोड़ा सा मांगना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको झुकना पड़ेगा, ताकि भगवान जो वस्तु देने के लिए आए है वो हमको मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं सोचता हूँ कि मैंने जो बात बोलना था आपके सामने रखा, अगर आप सभी के आपके विषय में आप लोगों को इस विषय में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट है, एक भजन गा लेंगे। यस यस, एक आधो प्रश्न ले लेंगे, 5 मिनट है तो वो जी। यस माधव बताइए।
कि जैसे हम मानते हैं कि 24 घंटे का एक दिन, तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे में 28 मनु होंगे।
हाँ, जैसे ये दिन का मनु के बारे में बताया गया, रात को तो सारे सो जाते हैं, इसलिए रात को मंदिर रात के विषय में इतना उल्लेख नहीं हुआ है, मगर रात को भी 14 हो जाएगा, समझे ना, जैसे डे में होता है वैसे रात्रि में होता है, ठीक है। माने अगर अवधि को समय के टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए, जैसे 14 मनुओं का पीरियड रहता है, वैसे पीरियड के अनुसार मतलब समय जो होता है, समय समझते हो ना, जैसे इसमें 12 घंटा हो रहा है उसमें भी 12 घंटा है, वही 14 मनु का शासन का जितना समय होता है वही समय है
प्रभु जी। और ये जैसे ब्रह्मा जी के मतलब एक दिन में 24 मनु है, तो फिर उनमें
24 मनु नहीं है, 24 मनु का समय है,
समय तो
14 मनु है जो दिन के समय में जो जागृत रह के सारे काम कराते हैं, रात के समय में नहीं, रात के वो 14 मनु जितना शासन करते वही समय है, रात्रि का भी वही समय है।
तो उसमें कभी प्रलय होता है ब्रो जी?
भाई वही तो प्रलय है, जो तीन प्रकार के मतलब प्रलय है ना, उसमें से ब्रह्मा जी सो जाने से एक महाप्रलय हो जाता है, वो भी एक प्रलय है, ठीक है। चार प्रकार का, हाँ सही। ओके, तो 3 मिनट बाकी है, जो एक बहुत सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, उसको गा लेंगे फिर चले जाएंगे, ठीक है। तो सब लोग राजी हो? तो जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले प्रभु जी राधे श्याम बोला। जीव जग जीव जग, गोरा चांद बोले, निद्रा जा माया पिशाच रकले भोजीबो बोलिया से संसार भीतरे भज भूले अरहिने तुम्हें अविद्यार भरे তোমার লইতে আমি হইনো অবতা আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি হরি নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাগে ভক্তি বিনদ প্রভু চরণে পড়িয়া সে হরে নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া জীব জগ জীব জগ গোরাচন্দ বলে জয় গৌরানিতা জয় গৌরানিতা নিতাই জয় গৌর নিতাই জয় জয় প্রভু পার জয় প্রভু পার জয় প্রভু পার জয় জয় প্রভু পার নিত গৌর হরি বল হরি বল হরি বল গৌর হরি বল
শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কি উপস্থিত ভক্ত বৃন্দ কি জগৎগুরু শিল প্রপাদ কি গৌর প্রেমানন্দে চলো।